एस्ट्रो लाइफ लेकर आए हैं आपके लिए
ग्रहों का खेल
विद वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर जगजीत। उलझने चाहे कितनी भी बड़ी अथवा चुनौतीपूर्ण क्यों न प्रतीत होती हों, वे सभी कुछ आंकड़ों, जानकारियों अथवा कुछ कणों से मिलकर बनती हैं। उनको विभाजित किया जा सकता है। इसके कुछ किसी भी एक हिस्से को अच्छी तरह समझ लीजिए या उसकी स्थिति को सुनिश्चित कर लीजिए। अब यह पता कीजिए कि इस एक हिस्से की तुलना में बाकी दूसरे हिस्से किस प्रकार काम कर रहे हैं। इस तरह से आप उलझन के एक भाग को निश्चित कर लेते हैं। अब जो कुछ भी आपने समझा है उसके साथ दूसरे हिस्सों के संबंधों को निश्चित करके जल्द ही सारी उलझन काबू में आ जाती है। जब तक कोई व्यक्ति किसी उलझन की भीड़ में से किसी एक आंकड़े, एक तथ्य या किसी एक विशेष चीज का चुनाव ना कर ले, तब तक उलझन बनी रहती है। जिस भी चीज को चुना और प्रयोग किया जाता है वह बाकी सबके लिए स्टेबल डेटम बन जाती है। कोई भी ज्ञान विशेष रूप से और सही मायनों में केवल एक आंकड़े से ही बनता है, यही उसका स्टेबल डेटम होता है। अगर इसे अस्वीकार कर दिया जाए तो ये सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। स्टेबल डेटम का सही होना जरूरी नहीं है। स्टेबल डेटम केवल वह जानकारी है जो चीजों को उलझने से रोकता है और जिसके आधार पर दूसरे आंकड़ों को स्पष्ट किया जा सकता है। अब किसी युवक को एक मशीन का इस्तेमाल करना सिखाते समय यदि वह आपके निर्देशों को समझने में असफल रहता है तो इसका मतलब केवल यही है कि उसके पास कोई स्टेबल डेटम नहीं था। सबसे पहले एक तथ्य को उसकी समझ में लाना आवश्यक है। उस एक को समझकर वह बाकी दूसरों को भी समझ सकता है। इस प्रकार किसी भी उलझन भरी अवस्था में कोई व्यक्ति तब तक मूर्ख बना रहता है या उलझन में रहता है जब तक कि वह किसी एक तथ्य या किसी चीज को पूरी तरह से नहीं समझ लेता। बहुत ही खूबसूरत विचारों के साथ हम अपने आज के प्रोग्राम को एस्ट्रोलॉजर जगजीत जी के साथ शुरू करते हैं। जगजीत जी नमस्कार।
नमस्कार जी।
जगजीत जी, आज हमारे साथ आप सबसे पहला जो हॉरोस्कोप है वो किन का शेयर करने वाले हैं?
जी, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है ये है 27 जून 1992 और इनका जो क्वेश्चन है ये मैरिज के विषय में है। और सबसे पहले तो मैं इनके जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से इनका जो होरोस्कोप बनता है उसमें जो ग्रहों की स्थिति है वो इस प्रकार है कि इनको जो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है मरकरी
जी,
वो 11th भाव में है। और इनका जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि मैरिज के विषय में अगर मैं होरोस्कोप की बात करता हूं तो वो बहुत सारे जो भाव रहते होरोस्कोप के उनको रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं मेन बोलूं तो इनके होरोस्कोप में जो 7th भाव है वो पार्टनर्स का भी रहता है तो उसको रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे 5th भाव रहता है लवर्स का रहता है या भाग्य का 9th भाव, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो कंसिडर की जाती है जब भी होरोस्कोप। उसके बाद मंगल दोष देखा जाता है और भी कई तरह के जो दोष हैं या अच्छे योग हैं वो देखे जाते हैं। और जैसे कि मैं बोलूं कि जुपिटर की जो स्थिति है ये भी देखी जाती है। और इनके होरोस्कोप में अगर मैं बात करूं जैसे कि 7th भाव की बात करता हूं तो जुपिटर की जो स्थिति है वो व्याय भाव में होने से कई बार ऐसा भी देखने में है कि इंसान की जो मैरिज रहती है वो डिले रहती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे इनके होरोस्कोप में अगर मैं शनि की बात करूं उसकी स्थिति को अच्छी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान की जुबान जो है वो कड़वी हो जाती है। कहने का भाव यह है कहीं भी मैरिज की अगर बात रहती है तो कोई ना कोई उसमें दोष निकल आता है, भाई उसका ब्रदर ऐसा है या सिस्टर ऐसी है या उसकी मदर है, तो कोई ना कोई ऐसे कारण रहने से जो मैरिज है वो डिले हो जाती है। कारण कि जैसे जुपिटर व्याय भाव में जैसे मंगल दोष जिसे हम मंगलिक बोलते हैं और वो भी इनके होरोस्कोप में दोष रहता है। तो कुल मिला के मैंने यही कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि अब से पहले इनको जो मैरिज के प्रपोजल हैं ये नहीं आए होंगे, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात जरूर रही होगी जो कि वो पूरा नहीं हो सकी। तो इस साल भी जो इनके कुछ प्लैनेट्स चेंज हुए हैं अगर मैं बात करूं सूर्य, शुक्र और केतु की या मंगल की या चंद्र की या राहु की, तो इनकी भी स्थिति इस बार कुछ अच्छी नहीं है। जैसे कि राहु जब पंचम भाव में रहता है और शुक्र एट्थ भाव में या मंगल सप्तम रहता है, तो ये चीजें ऐसी होती हैं कि उस चीज को, उस कार्य को पूर्ण नहीं होने देती। और जहां तक रहा तो इनके जो कुछ योग मैरिज के बन रहे हैं, तो वो नेक्स्ट ईयर इनके जो मैरिज के योग हैं, ये उस वक्त जरूर बनने के जो योग हैं ये हैं। लेकिन फिर भी मैं इन्हें यही कहना चाहूंगा कि जहां भी इनकी मैरिज होती है, तो इन्हें अपनी वाणी पर जरूर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि शनि की स्थिति कुछ ऐसी है कि जिस भाव में रहती है तो इंसान क्रोधित काफी हो जाता है। और मैरिज, क्या मैं ये भी कहना चाहूंगा, चाहे जॉब रहे, बिजनेस रहे, तो जो काम हम प्यार से कर सकते हैं तो वो क्रोध या लड़ झगड़ कर नहीं होता। तो इन्हें अपने क्रोध पर भी जरूर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि मंगल जब अष्टम भाव में रहते हैं और शनि की ये पोजीशन रहती है, तो इंसान को हर छोटी छोटी बात पर जो चिड़चिड़ा स्वभाव है ये बन जाता है। तो मैंने यही कहना चाहूंगा कि इन्हें अपने व्यवहार में जरूर चेंज करना चाहिए, और नेक्स्ट ईयर इनके मैरिज के जो योग हैं ये जरूर बनते हैं। लेकिन मैंने यही कहना चाहूंगा कि जब भी ये धर्म स्थान पर जाते हैं, अपने अच्छे के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वहां पर अगर बादाम, एलमंड्स उनका दान करते हैं, वो इनके लिए जरूर अच्छा रहेगा। या जैसे कि किचन में जो बर्तन यूज होते हैं, उनका दान अगर धर्म स्थान पर जाकर किया जाए, वो बहुत अच्छा माना जाता है। और जहां तक इनके मैरिज के योग, तो नेक्स्ट ईयर इनके जो जून है उसके बाद का जो समय है, वो मैरिज के लिए इनके लिए जरूर अच्छा रहेगा।
जी, और भी जगजीत जी के साथ ढेर सारी बातें करेंगे अपने इस प्रोग्राम में, और उससे पहले हम लोग आप सबके साथ जगजीत जी का डिटेल्स शेयर कर देते हैं, जिसका जिसे आप उनके साथ अगर चाहें तो बातचीत करके अपने लिए और भी जानकारियां ले सकते हैं। ईमेल है info@astrologerjagjit.com और फोन नंबर है 02103901133। लैंडलाइन पर भी बात की जा सकती है और लैंडलाइन का नंबर है 09278785। मैं बात कर रही थी उलझन के ऊपर, काम का जी दुनिया की उलझनों से निपटना। उलझन का अर्थ है अनिश्चितता, उलझन मूर्खता है, उलझन में होना ही असुरक्षित है। जब कभी आप अनिश्चितता, मूर्खता और असुरक्षा के बारे में सोचें तो आप उलझन के बारे में सोचें और धीरे धीरे आप इसे अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो फिर निश्चितता किसे कहते हैं? किसी उलझन का ना होना, तब बुद्धिमान होना क्या है? उलझन को सुलझाने की योग्यता। तो फिर सुरक्षा क्या है? उलझन में से गुजरने या उलझन के पास जाने या उलझन को सुलझाने की योग्यता। इस प्रकार निश्चितता, बुद्धिमानी और सुरक्षा उलझन का अभाव या उलझन को संभालने की योग्यता है। किसी लड़के को मशीन चलाना सिखाते समय उसे ढेर सारी जानकारियां एक ही साथ देकर बाद में उसकी गलतियां ना निकालें, ये उसके लिए उलझन का कारण बन सकता है, जिसकी वजह से वह मूर्खतापूर्ण व्यवहार करने लगता है। किसी भी एक तथ्य को ढूंढ निकालिए जिसकी मदद से उसकी उलझन पकड़ में आ सके। उसे बताएं यह मशीन है। संभव है कि आप ऐसे व्यक्ति को निर्देश दे रहे हैं जिसमें आत्मविश्वास नहीं है, जिसका जीवन व्यवस्थित नहीं है। उसे बताएं यह मशीन है। अब आप उसे मशीन के बारे में आश्वस्त होने दीजिए, उसे मशीन को महसूस करने दीजिए, उसे थोड़ा बहुत मशीन को चलाने दीजिए, उसे मशीन पर अपनी उंगलियां फेरने दीजिए और उसे फिर बताइए यह मशीन है। कुछ ही समय में मशीन के प्रति उसकी निष्ठा में हुई वृद्धि देखकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। इससे पहले कि वह मशीन की जटिलताओं को सीखे, उसे मशीन में संबंधित किसी एक तथ्य की जानकारी होनी चाहिए। ये बात भी कोई महत्व नहीं रखती कि पहले वह मशीन के कौन से हिस्से को भली भांति समझता है। महत्वपूर्ण है कि उसे किसी ऐसे तथ्य के बारे में बताया जाए जो सरल है। आप उसे दिखा सकते हैं कि ये क्या करती है। आप उसे बता सकते हैं कि मशीन किन चीजों का उत्पादन करती है। आप उसे यह भी बता सकते हैं कि मशीन को चलाने के लिए उसे क्यों चुना गया है। परंतु यह जरूरी है कि आप उसे एक मौलिक तथ्य के बारे में स्पष्ट रूप से बताएं, वरना वह उलझन में पड़कर भ्रमित हो जाएगा। और इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम जगजीत जी से आज के दूसरे हॉरोस्कोप के बारे में जानकारी लें।
जी मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि लिसनर्स ने स्टार साइन के विषय में जानना चाहा है
जी,
तो सबसे पहले मैं स्टार साइन लेना चाहूँगा
जी।
तो अगर हम बात करते हैं जैसे कि मीन पाइसिस के बारे में जानना चाहा है, तो अगर मैं होरोस्कोप की बात करूँ तो इस राशि को यानी कि स्टार साइन को जो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है वो है जुपिटर यानी के बृहस्पति। और अगर मैं होरोस्कोप की बात करूं तो ये भी कहा गया है कि अगर होरोस्कोप में जुपिटर अच्छा रहता है देवगुरु बृहस्पति, तो कुंडली के बहुत सारे जो दोष हैं ये दूर हो जाते हैं। और होरोस्कोप में अगर मैं जुपिटर की बात करूं तो बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले तो हमारे बड़े बुजुर्ग, फिर फादर, इन सभी को रिप्रेजेंट करता है। कई बार देखने में आया कि अगर जातक का जुपिटर अच्छा रहता है तो वो जरूर धार्मिक कार्य करने वाला होता है। अगर असेंडेंट कई बार देखा गया जुपिटर रहता है तो इंसान धर्म कर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है, किसी का बुरा नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति देखा गया है। और इस राशि के जातक अगर जुपिटर की स्थिति अच्छी रहती है तो नेक विचारों वाला जो इंसान है ये रहता है। जैसे कि मैंने बोला कि जुपिटर बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, फादर को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि येलो कलर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस राशि के जातक अगर धर्म स्थान पर जाकर, किसी भी रिलीजियस प्लेस पर जाकर वहाँ सफाई करते हैं, अपनी श्रद्धा दिखाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और कई बार ऐसा देखा गया कि अगर होरोस्कोप में भी जुपिटर राहु से मिला रहता है यानी कि बृहस्पति राहु का योग जो रहता है ये अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इसे चंडाल योग की भी जो उपाधि है ये दी गई है। तो उस वक्त अगर कई बार ऐसा देखा गया कि इंसान अगर जॉब में रहता है तो जॉब में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहती है, अगर बिजनेस है तो उसमें रहती है, तो उस वक्त अगर इंसान धर्म स्थान पर जाकर वहाँ येलो वस्तुओं का जैसे कि चने की दाल है उनका दान धर्म स्थान पर करता है और अपने अच्छे के लिए प्रार्थना करता है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। और जैसे कि अगर इस राशि के जातक अगर अपनी पिता की दी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, इवन कि चाहे फादर के कपड़ों का उपयोग करते हैं या फादर जो भी बिजनेस करते हैं, अगर ऐसा व्यक्ति उसी बिजनेस को आगे बढ़ाता है तो वो भी बहुत अच्छा माना गया है। और इस राशि के जातक कई बार होता है कि घर में जब इकट्ठे रहते हैं तो छोटी छोटी बात पे झगड़ा शुरू हो जाता है या फैमिली मेंबर आपस में नहीं अच्छे तरीके से रह पाते, तो कई बार ऐसा लगता है कि भाई ये वास्तु दोष है। या उस वक्त अगर घर में चांदी के किसी भी बर्तन में येलो कलर यानी कि हल्दी लगाकर भी रखा जाए, स्थापित किया जाए घर में, तो ये भी बहुत जो अच्छा है ये माना जाता है। और इस राशि के जातक अगर घर में पीले फूल येलो कलर के अगर फूल लगाते हैं तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। और अगर मैं बात करूं इस स्टार साइन के लोग कि कई बार ऐसा होता है कि हम धर्म स्थान पर जाते हैं, किन चीजों का हमें दान करना चाहिए, तो उस वक्त अगर कपूर का या घी का दान भी करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है।
जी जगजीत जी, आपसे और भी बातचीत करेंगे मगर छोटा सा प्यारा सा भजन सुनने के बाद।
सब छोड़ के जाना है, नई देर लगेगी हो, सब छोड़ के जाना है, नई देर लगेगी। ये देश बेगाना है, नई देर लगेगी, ओ सब छोड़ के जाना है। सब छोड़ के जाना है, जाना है, नई देर लगेगी हो, सब छोड़ के जाना है, नई देर लगेगी। ये देश बेगाना है, नई देर लगेगी, ओ सब छोड़ के जाना है। सब छोड़ के जाना है, कर्ज चुकाना है, नहीं देर लगे। लगेगी सब छोड़ के जाना है नहीं देर लगेगी ये देश बेगाना है नहीं देर लगेगी ओ सब छोड़ के जाना है हो सब छोड़ के जाना है देर लगेगी सब छोड़ के जाना है नहीं देर लगेगी ये देश बेगाना है नहीं देर लगेगी ओ सब छोड़ के जाना है हो सब छोड़ के जाना है छोड़ के जाना है नहीं देर लगेगी ये देश बेगाना है नहीं देर लगेगी ओ सब छोड़ के जाना है हो सब छोड़ के जाना है सब छोड़ के जाना है नहीं देर लगेगी हो सब छोड़ के जाना है नहीं देर लगेगी
नियंत्रण अच्छा होता है और नियंत्रण बुरा भी होता है इन दोनों में वही अंतर है जो निश्चितता और अनिश्चितता में होता है अच्छा नियंत्रण निश्चित और स्पष्ट होता है उसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है बुरा नियंत्रण अनिश्चित होता है तथा घटता बढ़ता भी है उसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता अच्छे नियंत्रण के परिणाम स्वरूप व्यक्ति निश्चित हो सकता है बुरे नियंत्रण के साथ व्यक्ति कभी निश्चित नहीं हो सकता हमारे आसपास इतना ज्यादा अनिश्चित एवं मूर्खतापूर्ण नियंत्रण हो सकता है कि हम में से कुछ लोग यह विश्वास करने लग जाते हैं कि जैसे नियंत्रण कोई बुरी बात होती है परंतु इस प्रकार की सोच सच्चाई से कोसों दूर है अगर कोई उलझन को सुलझाना चाहता है तो नियंत्रण अनिवार्य है कुछ भी करने के लिए व्यक्ति में वस्तुओं को अपने शरीर को अपने विचारों को नियंत्रण करने की योग्यता होना आवश्यक है चाहे वह थोड़ी मात्रा में ही क्यों ना हो किसी उलझन को अनियंत्रित निरुद्देश्यता कहा जा सकता है जिन लोगों का इस निरुद्देश्यता पर कुछ नियंत्रण है केवल वही उलझनों को समझा सकते हैं जो लोग नियंत्रण करने में असमर्थ हैं, वास्तव में वे उलझनों को जन्म देते हैं। इस प्रकार अच्छे और बुरे नियंत्रण का अंतर और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। यहाँ पर अच्छे और बुरे नियंत्रण में मात्रात्मक अंतर है। एक पूर्णतः स्पष्ट नियंत्रण का दूसरे लोग पूर्वानुमान लगा सकते हैं, इसलिए ये एक अच्छा नियंत्रण है, और अस्पष्ट और कमजोर नियंत्रण का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता और ये एक बुरा नियंत्रण ही कहलाएगा। इरादे का भी नियंत्रण के साथ कुछ संबंध है। नियंत्रण को रचनात्मक एवं विध्वंसात्मक उद्देश्यों के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, परंतु आप पाएंगे कि जब इरादा विध्वंसात्मक उद्देश्यों का होता है तो बुरा नियंत्रण ही प्रयोग में आता है। इस प्रकार उलझन के इस संपूर्ण विषय के बारे में बहुत कुछ किया जा सकता है। आपको शायद यह अजीब लगा हो कि यहाँ पर केवल उलझन को ही लक्ष्य बनाया गया है, लेकिन हम देखेंगे कि जिन बातों को हम जीवन में बुरा समझते हैं उन सबके पीछे उलझने ही होती हैं, और यदि व्यक्ति उलझन पर काबू पा सकता है तो उसका ध्यान बुराइयों से हटकर रचनात्मक कार्यों में लग सकता है। जब तक व्यक्ति को उलझनों द्वारा उलझाया जा सकता है, वह केवल विनाशकारी कार्यों के अतिरिक्त कुछ नहीं सोच सकता। जिस काम को वह सबसे अधिक करना चाहता है वह है उलझन को समाप्त करना। इसी के साथ जगजीत जी से हम लोग बात करते हैं कि कभी कभी हमारे जो लिसनर्स हैं हमें जो हॉरोस्कोप भेजते हैं हम लोग वो अपने प्रोग्राम में शामिल नहीं कर पाते। तो जगजीत जी, आप हमारे लिसनर्स से क्या चाहते हैं, किस तरीके की वो डिटेल आपको भेजें कि जो हमारा प्रोग्राम है हम उनके जो हॉरोस्कोप है आने वाले प्रोग्राम में शामिल कर सकें?
जी हाँ, जब भी लिसनर्स अपना डिटेल सेंड करते हैं तो उसमें तीन चीजें जरूर मेंशन रहनी चाहिए। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ
जी,
फिर टाइम ऑफ बर्थ एंड फिर प्लेस ऑफ बर्थ। और जब भी प्लेस ऑफ बर्थ रहता है तो उसमें जो कंट्री है या वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, सिटी है, ये मेंशन रहना चाहिए
जी।
और टाइम में AM है या PM है ये मेंशन रहना चाहिए
जी।
तो इसके अलावा जो वो जानना चाहते हैं, जो भी उनका कोई क्वेश्चन है वो पर्टिकुलर होना चाहिए। अगर बिजनेस के रिलेटेड में है तो कौन सा बिजनेस है, अगर जॉब के रिलेटेड है कौन सी जॉब है, या और भी जो क्वेश्चन है वो संक्षिप्त में होना चाहिए ताकि उसका जो जवाब है ये दिया जा सके जी।
जी जगजीत जी, और ठीक है, अगर लिसनर्स को उसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आपसे संपर्क बना सकते हैं। हम लिसनर्स से अभी इजाजत चाहेंगे बिकॉज हमारा वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम आपके साथ और बातचीत कर पाएं। इसी वादे के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला सभी का वक्त जो है बहुत अच्छा निकले, और हम लोग अगले सप्ताह आपके साथ फिर से इसी वक्त इसी समय शामिल हो जाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार जी।
नमस्कार।
planetaudio.org.nz/ग्रहों का खेल।